الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 یعنی کہ 104 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، وقولوا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو، واسمعوا، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ بڑی آسان ویسے تو آیت ہے، صرف اس میں ایک لفظ غور کرنے کا، راعنا، لا تقولوا راعنا۔ یہ جو اس زمانے کے مدینہ میں جیوس تھے، انہوں نے ایک یہ سمجھے کہ شرارت کہہ لیں یا مذاق کے طور پہ یا سارٹ آف ڈیگریڈ کرنے کے طور پہ یہ لفظ نکالا راعنا۔ یہ ہیبرو کا ایک ورڈ ہے جو کہ ایک بدعا ہے، ہیبرو میں اگر اس کا معنی لیا جائے، کوئی اس برے سارٹ آف فارم میں استعمال ہوتا ہے، ہیبرو عبرانی زبان جسے کہا جاتا ہے ہیبرو لینگویج میں، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائی ہے، یعنی ہمارے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہمارے ساتھ ہمیں ذرا سی جو ہے نا ہمارے ساتھ رعایت کیجیے، لینینسی رکھیں، بالکل اگزیکٹلی عربی میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن ہیبرو لینگویج میں یہ وہ ہے۔ اب یہ جو جیوز تھے، یہ لوگ اسے ظاہر ہے انٹینشنلی جان بوجھ کر یہ لفظ یوز کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولا کرتے تھے، لیکن اور جو بڑے بڑے جو عربز تھے عربی زبان، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی انیشلی، کیونکہ ان کے مطابق تو اس کا میننگ یہ بنتا تھا، اور انہیں ہیبرو لینگویج تو آتی نہیں تھی، تو انہوں نے بھی بعض اوقات یہ کہنا شروع کر دیا۔ اس سے وہ جو جیوز سے یہ آپس میں اور بیٹھتے ہیں جیسے اپنی گیدرنگز میں، اور ہنستے اور مذاق اڑاتے کہ یہ دیکھو یہ ہم نے مسلمانوں کو بھی اس کام پہ لگا دیا۔ تو اس کے اوپر ہی خاص طور سے آیت نازل ہوئی کہ لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، انظرنا، کہ آپ دیکھیے، انظرنا یہ کوئی دوسرا ورڈ استعمال کرو،
انظرنا کہ چلو
مطلب ہمیں دیکھیں یا ہماری رعایت کریں، مطلب ان دونوں ورڈز کا سیم ہی بنتا ہے اگر آپ عربی میں دیکھیں تو، لیکن ظاہر ہے اگر آپ اس وہی ورڈ ہیبرو لینگویج میں، اب جیسے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں، یہ ایک لفظ ہی ہے گلشا، یہ ٹرکش ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گیوشا، یہ جو عربی ٹرکش لینگویج میں بولا جاتا ہے گیوشا، گیوشا کا میننگ وہ اس کے مطابق ہوتا ہے کوئین آف روزز، اور یہی جاپنیز کے اندر گیشا کہتے ہیں ایک پروسٹیٹیوٹ کو یا جو اس طرح کی عورت ہوتی ہے، تو میننگس تو، اور ظاہر ہے لینگویجز تو الگ الگ ہیں اور ان کے میننگس تو الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے مثالیں ہیں اس وقت، لیکن آئی تھنک ایزی ہے بات سمجھنا، لیکن خیر کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہے، ایسا فیل ہے، یہ جو دوسروں کو سمجھے کسی ناجائز کام کرنے کی طرف ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں، تو وہ کام کرنا ہی ان اٹسیلف جائز نہیں ہوگا، پھر خاص طور سے اگر کوئی عالم ہے یا کوئی امام ہے یا کوئی لیڈر ہے، اس کے لیے زیادہ کباہت ہوگی اس کام کو کرنے میں، اگر اس کا اگر ایون دو وہ جو ایکشن ہے اس میں کوئی ان اٹسیلف حرج نہیں ہے، لیکن دوسروں کو اگر اس سے کوئی غلط ڈائریکشن میں جانے کا موقع ملتا ہو تو پھر وہ اس سے بھی رک جائے، کیونکہ اس کی ایزی مثال دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو فتح مکہ ہو گیا اور سب کچھ کنٹرول میں بھی آ گیا، तो उन्होंने कहा मेरा दिल ये चाहता है कि मैं इस खाना काबा को ओरिजिनल जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी और जो इसका स्ट्रक्चर बनाया था, मैं इसको उस पैटर्न पे दोबारा बनाऊं। लेकिन मुझे डर लगता है अगर मैंने एक दफ़ा ये काम कर दिया तो फिर समझे कि दोबारा लोगों को मौका मिलना शुरू हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर एडिशन कर दें, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दें, और वो फिर लोग इसी काम में ही निकल जाएंगे। तो उन्होंने वो भी नहीं किया। अगरचे इवन दो आप देखें वो हतीम जो है, इट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ खाने काबा, बट उसे नहीं लिया गया, बाद में भी नहीं लिया गया जब मुसलमानों की हुकूमत भी आ गई और सब यानी कंट्रोल में भी आ गया। तो मसलियत यानी समझाने का एक फिका का मसला इससे ये निकलता है कि अगर कोई ऐसा काम है जिससे दूसरे को कोई गलत काम की तरफ मिलती है डायरेक्शन, तो फिर उससे बेहतर है दूर रहना। मा यवद्दुल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। यवद्दू कहते हैं यानी दिल चाहने को, तो मा यवद्दू उनका दिल नहीं चाहता, अल्लज़ीना कफरू जो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो चाहे अहले किताब में से हों और ना मुशरिकीन में से हों, कि आपके ऊपर अन युनज़्ज़ल अलैकुम कि आपके ऊपर कोई मिन खैर मिन रब्बिकुम रब की तरफ से कोई अच्छी चीज़ नाजिल हो, ये उनका दिल नहीं करता। वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह जो है वो ख़ास कर लेते हैं अपनी रहमत को मैयशा जिसके लिए भी वो चाहे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, और अल्लाह बहुत ही फ़ज़ल वाला और अज़ीम है। अब इसमें होता ये था कि जो ज्यूज़ थे ना, ये मुसलमानों को ऑन एंड ऑफ ऊपर से कहते थे कि हम तो तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, और हम तो यानी अगर कोई अच्छी चीज़ आपके ऊपर नाजिल हो तो हम उसे उस पर ईमान भी लाएंगे, मगर हम क्या करें कि ये जो हमारे पास दीन है ये असल सही दीन है, आपके पास जो दीन है वो सही नहीं है, वरना हम तो आपके साथ हैं। और यानी ऊपर से उन्हें एक हिपोक्रेसी दिखाते थे, तो उसके ऊपर ये नाजिल हुई कि इनके दिलों में ही ये बात है कि ये आपका भला चाह ही नहीं सकते, और इन्हें असल खार या असल जेलेसी या बोझ या हसद या असल उसी चीज़ पे है कि आपके ऊपर कोई नई वही अल्लाह की तरफ से आ कैसे रही है, तो इन्हें इसी बात से ही वो है। एक तो देखें यहाँ पे ज्यूज़ जो थे इनके दो दावे थे बेसिकली। पहला ये था कि हम जो ज्यूश जो रिलीजन है ये इस्लाम से बेटर है, और दूसरा ये क्या कह रहे हैं, कहते थे कि हम आपके खैर ख्वाह हैं। तो लेकिन बात यह है कि ये जो कह रहे हैं बेहतर होना इस्लाम से, कोई भी जब एक नई शरीयत आ जाती है तो पुरानी शरीयत मनसूख हो जाती है, इसे इल्मी लैंग्वेज में कहा जाता है नासिख और मनसूख होना। ऐसी बहुत सारी अहादीस में आपको मिलता है, वो कौन सी हदीस थी, फंतवन ज़ियारतुल कुबूरी फ़ज़ूरूहा, वो हदीस है ना कि पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने से मना फरमाया और फिर कहा कि मैंने तुम्हें पहले मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तो जो पुराना ऑर्डर था वो फिर कैंसिल हो गया और नया ऑर्डर आ गया। अब ये एक चीज़ इसको कहते हैं नासिख और मनसूख, जब नई एक शरीयत आ गई, जो नई आयत भी आ गई कुरान पाक में भी आगे आ रहा है, ये आयतों के मामले में भी एक नया जब ऑर्डर आ गया तो पुराना वाला फिर कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये इनका जो इश्काल था वो ऐसे ही, यानी किसी इसके पीछे कोई बैकग्राउंड या कोई स्टैंडिंग नहीं थी इसमें, कोई फिर अफजल और गैर अफजल और ये सारी बातें डजंट मेक सेंस। दूसरी चीज़ ये देखेंगे यहाँ पे मुशरिकीन का यहाँ पे जिक्र है, वलल मुशरिकीन, तो कैटेगोरिक इससे आपको ये पता चला कि मुशरिकीन यानी ज्यूस के बीच में तो ये समझेंगे कोई हीला हो सकता है कि ये अहले किताब हैं फलाम का, तो उनको बिल्कुल मुशरिकीन के साथ अल्लाह ने एड्रेस किया, गमिन अहलिल किताब वलल मुशरिकीन, कि इनका मामला सेम ही है। तो इससे ये भी एक चीज़ पता चलती है कि ये अहले किताब हों या जो भी हों, लेकिन ये खड़े हुए उनके मुशरिकीन की कैटेगरी में ही हैं, इसीलिए इन दोनों को साथ एड्रेस किया गया यहाँ पे। समझ आ रहे हैं? आगे ये एग्जैक्टली ये आयत अब देखें तो नसख के बारे में, जो मैं नासिख और मनसूख की बात अभी कर रहा था उसी के ऊपर ये आयत कैटेगोरिक आपके सामने आती है। नेक्स्ट मा नन सखु मिन आयत नन अव नुनसिया नाति बि खैरिम मिन्हा अव मिस्लिहा, जो भी माँ नन सकु मिना, जो आयत को हम मनसूख कर देते हैं या औ नुनसिया, ये नुनसिया ये अनसा युनसी कहते हैं भुला देने को, या हम भुला देते हैं, ना ती बि खैर मिन्हा, फिर हम उससे कोई अच्छी चीज़ लेके आते हैं, या मिसलिहा, एटलीस्ट अच्छी ना भी हो तो उसके बराबर की यानी कि उसके कैलिबर की तो ज़रूर होती है वो। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, क्या आप जानते नहीं हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, ज़ाहिर है। और अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाती वल अर्ज, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला मुल्कु समा, उसकी तमाम जो मिल्क है उसकी, जो उसकी सल्तनत है, वह तमाम आसमानों और ज़मीन पर है, बेशक। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर, और कोई भी नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा वली और ना नसीर, वली मतलब हिमायती या सपोर्टर या कोई भी नहीं होगा, और ना मददगार, नसीर मददगार को कहते हैं। इसमें हुआ ये था कि जब तब्दीले किबला का वाक़या आता है ना, अच्छा एक मैं इसमें खारजी बात करना चाहूँगा, बाज़ लोग जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ों को लेते हैं कि ये कुरान में आ गया, अभी हदीस से नहीं साबित, या वाइस वर्सा, ये हदीस में आ गया कुरान में, पहले किबला बैतुल मुकद्दस था, ये ऑर्डर कहाँ था, ये ऑर्डर कुरान में नहीं था, कुरान में ऑर्डर आया खाने काबा में के किबला होने का, तो इससे ये पता चल रहा है बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसके लिए बैकग्राउंड हमें फिर समझ के और आगे चलना पड़ेगा। इसका रिलेशन यहाँ पर ये है कि जब ये किबला बदला तो इन ज्यूज़ ने ही फिर समझे कि उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि ये कैसा दीन है जो, यानी इनको पता ही नहीं है कि किबला कौन सा है, या पहले उस तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं फिर इस तरफ कर रहे हैं, तो इन्होंने इस तरह की ये बातें करना शुरू कर दी ज्यूज़ ने, तो उनके ऊपर ही अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई कि जब हम, यानी अल्लाह ने बताया कि कोई ऐसी चीज़ होती है, और इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ मैं भी डिस्कस करता हूँ ये कैसे हो सकता है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं, हम जब भी कोई आयत नसख कर देते हैं यानी कि उसे ख़त्म करवाना चाहेंगे, ख़त्म तो नहीं होती कुरान की कोई आयत, लेकिन यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये है कि उससे बेहतर एक दूसरी चीज़ ऑर्डर आ गया, कोई अमर आ गया, कोई हुक्म आ गया, कोई नहीं जिसे कहा जाता है ना करने का ऑर्डर आ गया, तो उससे बेहतर ले आते हैं या उसी की मिसल ले आते हैं, तो इसमें कोई ऐसी इश्काल की बात नहीं है, ये तो अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह की जो मर्ज़ी, अल्लाह सुबहानहू व तआला इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, वो जो मर्ज़ी चाहे करे। अच्छा अब तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं इस नसख की, एक तो ये है कि जो पुराना ऑर्डर है वो कम्प्लीटली ज़ायल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है अच्छा सॉरी एक मिनट पहली एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि पहला ऑर्डर था वो ऑर्डर आया उस पर लोगों को कोई गलत फहमी हो गई मिसाल के तौर पे, अब उस गलत फहमी को दूर करने के लिए फिर एक और ऑर्डर आया, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि पहले एक ऑर्डर आया उस ज़माने के हिसाब से, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीयत थी, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आपने अगर बाइबल में भी देखें तो वो यही कह रहे थे लोगों को कि मेरे पास अभी बहुत सी बातें करने के लिए, बट यू शैल नॉट अंडरस्टैंड देम नाउ, फॉर यू आर नथिंग बट द लॉस्ट शीफ ऑफ इज़राइल, वो ऐसे कुछ बाइबल के वर्ड्स आते हैं, तो यानी कहने का मकसद ये है कि उस वक्त दे वर नॉट रेडी फॉर ऑल दैट, तो उस वक्त के हिसाब से उतनी ही शरीयत के अहकाम थे, फिर आगे बाद में जब ज़रूरत पड़ी और लोग एटमोसफियर उसके मानूस हो गया या अकॉर्डिंगली हो गया तो फिर नया ऑर्डर आ गया। और तीसरी ये भी हो सकती है कि अल्लाह को तो ज़ाहिर है पहले से हर चीज़ पता है, पहले से पता है कि ये होने वाला है, लेकिन जानबूझकर एक अभी फॉर्म में अभी लोग रेडी नहीं है, तो अभी एक ये ऑर्डर इस कैटेगरी में दिया गया कि अभी के आजकल के हिसाब के लोगों के लिए ये ऑर्डर ऐसे है, और फिर जब टाइम चेंज होगा तो पहले से अल्लाह को मालूम है ज़ाहिर है कि ये ऑर्डर इस तरह से बदल जाएगा। जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही किसी से मेरी बात हो रही थी, उसको कोई ये वर्म कुछ कौन सी डिज़ीज़ बता रहा था इधर बैक में, तो उसकी वो इत्तफाकन आज ही उसने मुझे कोई एक दोस्त बता रहा था उसकी उसका उसकी क्योर क्या हो, उसने कहा कि पहले वो मुझे ये वाली पता नहीं राइजेक छोड़ के ये वाली दवाई लेनी पड़ेगी, इससे वो उसको ठंडा करेगा या पता नहीं उसे सुखाएगा, और फिर फाइनली उसके बाद मैं टेस्ट कराऊंगा, फिर वो मुझे एंटीबायोटिक्स देगा और उससे वो चीज़ ज़ाहिल होगी या ख़त्म होगी। यानी डॉक्टर को ये बात पता है कि इस वक्त ये बीमारी के लिए ये इसका इलाज का तरीका, ये असल इलाज वो दूसरी सेकेंडरी बीमारी का इलाज उसी से होगा, सेकेंडरी दवाई से, लेकिन पहले एक दवाई दी उसका ग्राउंड वर्क के लिए और फिर नेक्स्ट टाइम आगे दूसरी दवाई दी। तो इसमें कोई ऐसी यानी इश्काल की बात नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकली समझ आने वाली बात है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्लिम शरीफ में हदीस है, लम तकुन नबुवतुन कत्तु इल्ला तनासखत, के कोई भी नबी ऐसा नहीं आता जिसकी शरीयत में नसख ना हो, यानी एक ऑर्डर आता है फिर दूसरा आ जाता है तीसरा आ जाता है। तो इसमें कोई ऐसे इश्कालात या ऐसे तदरीजन जिसे कहा जाता है शरीयत में, बिल्कुल। ओवरऑल शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, नमाज का पहला हुक्म जो शरीयत के मसाइल में नमाज का आया है वो आया है 12-13 हिजरी में जाके, नहीं 10 हिजरी में जाके, यानी बिल्कुल एंड मक्की ज़िंदगी में आया है वो पहला ऑर्डर। उससे पहले तो शरीयत में कुछ भी नहीं था। टेक्निकली अल्लाह को तो मालूम था कि मैंने नमाज भी फ़र्ज़ करनी है, रोज़ा भी फ़र्ज़ करना है, ज़कात भी फ़र्ज़ करनी है, लेकिन ये सब अहकाम पहले 10 साल लोगों पर नहीं थे। उन पर सिर्फ ईमान की मेहनत थी, बस आप मुसलमान हो जाओ, एक अल्लाह पर यकीन कर लो, इसके अलावा फ़राइज़ नहीं थे। फिर तदरीजन अल्लाह ने जब देखा मुसलमान इस कॉम एटमोसफेयर के अंदर एक सोसाइटी बिल्डअप हो गई और एक ग्रुप और एक जमात बन गई, अब उनके ऊपर अहकाम जारी होना शुरू हो गए। तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है, ये बिल्कुल एक जाहिलाना शुभात वाली बात है।
नमाज तो उस ज़माने में पढ़ा करते थे ना, जूज़ और ये जो
नफल वगैरह और तहज्जुद की नमाज ना भी
तरीका डिफरेंट हो गया,
कुछ तरीका भी डिफरेंट था। आपने पीछे गुजरा था वरकऊ मार राकीन वाली में कि उनकी नमाज में रुकू नहीं होता था, तरीका भी डिफरेंट था। इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे, सहाबा भी काबे तुल्ला के सामने जाके नमाज़ पढ़ते थे, वो नफल नमाज होती थी, यानी कोई अपने उस पर पढ़ ले तो पढ़ ले, या तहज्जुद की नमाज अंबिया पर मैंने कहीं पे पढ़ा एक रिवायत में गालबन कि वो वाजिब होती थी, वो पढ़ा करते थे, आम आवाम पर नहीं होती थी। लेकिन आम आवाम पर जो फ़र्ज़ हुई नमाज, जो कहते हैं 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ हुई, वो वाकया मेराज पे जाके हुई, उससे पहले तक कोई नमाज फ़र्ज़ नहीं थी। बहरहाल ये इब्ने जरीर और इब्ने कसीर वगैरह में ये चीज़ लिखी हुई है। बाज़ ज्यूज़ ने, क्योंकि पहली दो जो थी कि जी अल्लाह को पता ही नहीं है या इनकी कैसी शरीयत है, और ऐसे इश्कालात करके और उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, हालांकि ऐसी कोई बात इसमें थी नहीं यहाँ पे। और फिर ज़ाहिर है उनके ये इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इवन एक फ़िरका गुजरा है हमारे यहाँ भी मोतज़िला का, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह की जो गैदरिंग हुआ करती थी उसमें उनका एक स्टूडेंट था जो समझे कि थोड़ा सा कन्वेंशनल मज़हब से हट के उसके बिलीव्स और अकायद हो गए, और फिर उन्होंने कहा इर्तज़ाला अन्ना की हमसे अलग हो गया है। फिर उसने एक फ़िरका स्टार्ट किया, उसे कहा जाता है मोतज़िला। कुछ इसके रेमिनिसेंस जो बाकियात हैं वो आज भी आई थिंक ओमान वगैरह में कुछ इसके बिलीवर्स मौजूद हैं, ज़्यादा बिल्कुल माइनॉरिटी में कोई गिने चुने लोग हैं। उनका भी ये बिलीव हो गया और उन्होंने भी ये मान लिया कि हाँ नसख जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नसख हो, या इस तरह के वो लोग भी कहना शुरू हो गए कि नहीं नसख का पॉसिबिलिटी तो है लेकिन शरीयत में कोई नसख नहीं है, जो भी ऑर्डर है वो सबके सब ऑर्डर्स मानने वाले हैं। लेकिन ये जमहूर जो इजमा है उम्मत का वो इस बात पे नहीं है, क्योंकि वत्तफ़क़त आला शराय आला जवाज़ुल नसख़ व वुकूल खालफत अलयहूद गैर अलईसवियत फ़ी जवाज़ी व क़ौलु यम तना अक़लन व अबू मुस्लिम अलसफ़हानी फ़ी वुकूई फ़क़ौल अन्नहु अन्ना जाज़ा अक़लन लाकिन्नहु लम यक़ा, ये रोल मानी के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम अले, यानी क्रक्स बात का यही है कि इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। दूसरी भी ये कुर्तुबी में भी के भी यह हवाला दिया हुआ है, मारफा तो हाजल बाबी वक़ैदा था व फ़ायदा तो अज़ीमतुल्ला तस्तग़नी अन मारफ़तुलमा वलायनकर जहलतलिया अगबिया वबी, जो लोग होते हैं ना बदबख़्त, ये उनकी एक फैलाई हुई चीज़ है, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। और एक ये यहाँ पे हज़रत ने कुरतुबी तफसीर कुरतुबी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह की जो उसका एक हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़िया भी लिखा है कि एक दफ़ा वो आए तो मस्जिद नबी में एक शख्स वाज़ कुछ दे रहा था या नसीहत कर रहा था या कुछ इस तरह से, तो उन्होंने लोगों से पूछा कि ये मस्जिद नबी थी या कोई दूसरी मस्जिद थी, हवाला बारलिया कुरतुबी में लिखा है। तो उन्होंने उस बंदे से पूछा कि आप तुम ये नासिख मनसूख और इसका सारा इल्म है तुम्हारे पास आयात का और ये सारा, तो उसने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर जाओ, फिर तुम अपना सिर्फ मैं फलां बिन फलां हूँ और अपना नाम प्रोपगेट नहीं करो, पहले इल्म सही हासिल करो और उसके बाद वाज़ो नसीहत वाले काम करो। तो इसके बारे खैर ये ज़्यादा डिटेल में मैं जा रहा हूँ, बट ये तफसीर इब्ने जरीर में, इब्ने कसीर में, दुर मंसूर में सारे वाक़यात लिखे हुए हैं और ये एक इजमाई मसला है। सिर्फ़ एक वो मोतज़िला में भी तमाम पूरी जमात नहीं बल्कि उनका भी सिर्फ़ एक कोई अबू मुस्लिम इस्फहानी जो शख्स था उसने ये खाली इनके ओपिनियन को सपोर्ट किया, बाकी और उम्मत ने नहीं किया कभी भी। खैर बहरहाल मोटी मोटी बात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई इस हवाले से हो गई है। और इसमें वो फौजुल कबीर के अंदर और उसमें अल्लामा शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने पूरी डिटेल्स में लिखी है। मुतकद्दमीन ने तो गालबन कुरान की आयत में, एक छोटा सा मैं इल्मी नुक्ता खाली बता रहा हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन मुतकद्दमीन विच इज़ जो बिफ़ोर के जो उलमा थे उन्होंने 500 के करीब आयात लिखी थी कि ये नासिख है मनसूख है इस तरह से, लेकिन बहरहाल शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह हैज़ नैरोड इट डाउन और उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ हर चीज़ का आंसर दिया। और सिर्फ उन्होंने 5 ऐसी आयात को नोटिफाई किया है जो प्रॉबली जिनके ऑर्डर्स नासिख और मनसूख की कैटेगरी में आते हैं, अदर देन दैट कुरान में ऐसी कोई आयात नहीं है। तो वो खैर उलमा की बहस है।
तो किबला का
नहीं, किबला का नहीं है ये, इसमें ज़्यादा खैर डिटेल में जाने की ज़रूरत मेरा ख्याल है हमें नहीं है, वो इल्मी बहस है और उससे आम समझें कि किसी चीज़ पे कोई आपके अकायद पे और इन चीज़ों पे फ़र्क भी नहीं पड़ता, उसमें हम जाएंगे तो वो फिर कन्फ्यूज़न होगा आई थिंक। वो ऐसे ही है कि भाई जब नबी के पास जा रहे हो तो सदका देकर आओ, वो एक आयत पे आता है मुझे याद नहीं है। अब वो सदका देकर आने का ऑर्डर जो था वो पहले था बाद में मनसूख हो गया, अब सदका देना वाजिब तो नहीं होगा लेकिन कोई देता है तो अफजल होगा। हज़रत अली पहले ये था कि ऑर्डर था कि वो आयत मुझे इस वक्त दिमाग में नहीं आ रही, एक मिसाल के तौर पे वो बता रहा हूँ, उसमें ये था कि आया जब भी आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जा रहे हो तो सदका देकर आएँ, आयत याद आएगी तो बताऊँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु या दूसरे जो गरीब सहाबा कराम थे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसे होते ही नहीं है कि हम सदका देकर आए, हम क्या, फिर उसको ऑर्डर मनसूख हो गया। तो वो आयतें कुरान में हमें मिलती हैं क्योंकि, तो इस हिसाब से उसे फुकाह ने लिखा फिर ये वाजिब नहीं होगा, ये फ़र्ज़ नहीं है। हाँ अगर कोई सदका दे के जाता है हाज़री के लिए तो ज़ाहिर है वो अफजल ज़रूर होगा इंशाल्लाह। इस तरह के मसाइल हैं। अगर कोई इस हवाले से हो क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। वैसे बहरहाल अम तुरीदूना अन तसअलु रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्रा बिलईमानी फ़क़द ज़ल्ला सवा सबील। डू यू वॉन्ट अम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, अन तसअलु के तुम सवाल करो रसूलकुम अपने रसूल से, जैसे कि कमा सुइला मूसा, जैसे कि मूसा अलैहि सलाम से सवाल किए गए इससे पहले भी, मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, और जो कोई तब्दील करेगा कुफर को बिल ईमान के साथ, फ़कत ज़ल्ला सवा सबील, तो वो यकीनन ज़ल्ला यानी कि गुमराह हो गया इस रास्ते से, सीधे रास्ते से। तो अब ये अगेन देन अगेन मूसा अलैहिस्सलाम से, क्योंकि ये लोग पीछे हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जो सवालात करते थे बात बात पे, अब उन्होंने यहाँ पे एक सवाल और ये रेज़ किया कि भाई जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इन्होंने कहा वो एक ही दफ़ा तौरात नाजिल हो गई थी, जो 10 कमांडमेंट्स जिसको कहा जाता है, तो ये कुरान क्यों नहीं एक ही दफ़ा में नाजिल हो जाता, एक इनका ये इश्काल था, उस पर ये आयत नाजिल हुई कि ऐसे ही सवालात में कुछ रखा नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा इसमें, यानी हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमतें हैं वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, हमें इन चीज़ों में पढ़ने से क्या हासिल होगा। और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह जो महमूद हसन गुजरे हैं हमारे काबरीन में से, उन्होंने ये बात लिखी है अपनी तफसीर के अंदर कि ये ऑर्डर जो है ये मुसलमानों को है, कि यानी मुसलमानों को एक तरह से डराने के लिए कि फजूल जो ही लुज्जत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात और ये करने से गुरेज करें, ये उन्होंने भी ये भी लिखा है सवाले से। वद्द कसीरु मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, और फिर वो यकीन यवद्दु पहले जैसा आया था, यहाँ भी वद्दा बहुत सारे लोगों कसीर कसीरों में नाल अहले किताब में बहुत सारे लोगों का ये दिल चाहता है, लव यरुद्दूनकुम के तुम्हें वो फेर दे, बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान से के बाद यानी मुसलमान होने के बाद तुम्हें वो कुफारा कुफर की तरफ फेर दे, इनका ये दिल चाहता है। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, और ये इस वजह से होता है क्योंकि इनके दिलों में हसद है, हालांकि मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक इनके ऊपर कैटेगोरिकली बिल्कुल हक बात को वाज़े हालांकि कर दिया गया है। फ़ाफू वस्फ़ाहू हत्ता याती अल्लाहु बी अम्री, सो बस व्हाट यू हैव टू डू इज़ फ़ाफू दरगुजर करो और वस्फ़ाहू यानी कि इसे इग्नोर करो, हत्ता याती अल्लाह बी अम्री यहाँ तक कि अल्लाह का ऑर्डर आ जाए। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात व मा तुक़द्दिमू लि अन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्ना अल्लाह बिमा तअमलूना बसीर। के वही नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और मा तुक़द्दिमु लि अन्फुसिकुम, और जो कुछ भी तुम आगे भेज दोगे अपने लिए अन्फुसिकुम वो अपने लिए ही होगा, मिन खैरिन खैर में से उसके लिए तुम भलाई पाओगे, तजिदूहु पाओगे इंदल्लाह अल्लाह के पास, इन्नल्लाह बिमा तअमलूना बसीर अल्लाह ताला यकीनन तामलूना जान जो भी तुम अमल करते हो बसीर उस पर वो देखने वाला है। बहरहाल इसमें ये जो यहाँ पे कहा गया फ़ाफ़ू वस्फ़ाहू हत्ता याती अल्लाह बि अम्री, यानी ये जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह खूब देख रहे हैं ज़ाहिर है, और अनकरीब इनके ऊपर ये जो जिहाद के और जिज़िया के और ये सारे मामलात के ऑर्डर्स जो अल्लाह अता करने वाले हैं, क्योंकि आया ना हत्ता याती अल्लाह बि अम्री, तो ये ऑर्डर सारे अल्लाह खुद देने वाले हैं इंशाल्लाह, तो आप बस क्या करें कि आप दरगुजर करें और इग्नोर करें, इनको छोड़ें इनके हाल पर, और उसके बाद फिर जो जिहाद वगैरह और किताल की आयात नाज़िल हुई तो इनके साथ भी फिर वही मामला किया गया जो कुफार और मुशरिकीन के साथ किया गया, यानी फसाद फैलाने का जो जुर्म है उसके बदले में या तो इन्हें मारा गया या जलावतन किया गया या फिर जिज़िया लेकर इन्हें रहने की इजाज़त दी गई। जो आता है ना फ़ाता भी रुया उल अबसार वाली जो आयात है उसके अंदर ये आता है वाक़या पूरा कि किस तरह इन्हें पहले मदीना से निकाला गया, फिर इन्हें खैबर से भी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में निकाल दिया गया। वक़ालु लैयत खुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, और ये लोग कहते हैं कि कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा मगर सिर्फ यहूदी या नसरानी, यानी कि ज्यू या क्रिश्चियन। तिल का अमान ही हूँ, ये इनकी सिर्फ आरजुए हैं, इनकी विशेज़ डिज़ायर्स हैं, और इसके पीछे इनके पास कोई यानी कि रीजनिंग या लॉजिक नहीं है, इसीलिए कहा गया आगे कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कि अगर तुम सच्चे हो तो हाथ बुरहाना कम, इस पर कोई दलील लेके आओ। भला क्यों नहीं, मन असलबा वजहू लिल्लाह, जिस जिस किसी ने अपने वजहुन, वैसे चेहरे को कहा जाता है लेकिन यहाँ ज़ाहिर है इसका मतलब ये होगा, जिसने भी अपने आप को डायरेक्शन में अल्लाह की तरफ किया, वह हुआ मुहसिनुन, और वो मुहसिन भी था, यानी कि नेक। मोहसिन का वैसे तर्जुमा अक्सर यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म में किया जाता है, आगे इंशाल्लाह सूरह अनकबूत पे इस पर बात करना बेहतर है, वहाँ पे इसका असल जो एहसान का मतलब है वो आता है। इसके ऊपर एक मेरे पास वो हदीस से मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा, उसमें इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब होता है, एक वो हदीस जिब्राइल में आता है, एक दफ़ा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने कुछ सवालात किए। अब ये मस्जिद नबी में बैठे हैं और बहुत सारे सहाबा देख रहे हैं, वहाँ पे मौजूद हैं, तो यानी वो टेक्निकली उन्हें एंड में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया भी, आपको आपका दीन सिखाने के लिए आए थे बाद में। तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, पहला सवाल किया। उन्होंने कहा अंता शहद ला इलाह इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीमुस सलात व तुती ज़कात व तुहज्जुल बैत इला आखिर हदीस के, तुम नमाज ईमान लाओ, नमाज पढ़ो, रोज़ा दो, रोज़ा हज ज़कात, ये जो पांच यानी पिलर्स ऑफ इस्लाम है ना, दैट इज़ इस्लाम। फिर उन्होंने पूछा कि दूसरा क्वेश्चन पूछा मल ईमान, तो उन्होंने कहा अंतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व कुतुबी के, तो अल्लाह पर ईमान लाओ, किताबों पर ईमान लाओ और मलाइका पर, रसूल पर और इन चीज़ों पर ईमान लाओ, ये ईमान है। नमाज रोज़ा हज ज़कात तो सिर्फ इस्लाम है, ये ईमान है। और फिर थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा मल एहसान, एहसान क्या है, तो इस पर उन्होंने कहा अंतअबुदल्लाह का अन्ना का तरा फ़ैन लम तकुन तरा फ़ैन हू यराक, कि तुम इबादत अल्लाह की इस कैपेसिटी में करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं भी देख रहे, ज़ाहिर है क्योंकि दुनियावी आँख अल्लाह को नहीं देख सकती, तो इस कैपेसिटी में तुम्हारा एक लाइफ स्टाइल हो या तुम्हारी इबादत का तरीका हो कि जैसे अल्लाह तुम्हें एट ऑल टाइम वॉच कर रहा है, वो एक यानी कि समझें कि ये ईमान का भी हाइस्ट दर्जा होता है, इसको कहा जाता है एहसान, उसी से लफ्ज़ मुहसिन निकला है। फिर फ़लाउ अजरु इंद रब्बी, तो अल्लाह के पास ज़ाहिर है उसका अजर होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो इस पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई गम करने की ज़रूरत है तुम लोगों को। होता ये था, ये ज्यूस कहते थे हम बेहतर हैं, नसारा कहते थे हम बेहतर हैं, आपस में बहस मुबाइसा करते थे और एक दूसरे के मज़हबों को भी बातिल बताते थे, लेकिन एनी हाउ दोनों मिलकर इस्लाम के दुश्मन होते थे। तो उनका इनकार यहाँ पे किया गया कि ये सिर्फ ये ज़िद या तासुब या उसकी बुनियाद पर लगे हुए हैं, लेकिन असल में ज़ाहिर है इनके पीछे इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत और तौरात जो थी उसका किताबुल्लाह होने का ईमान लाने का मतलब ही है कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना, और ये बहरहाल ये पीछे गुजर चुका है कि हम तो या लन तमस्सन्नी नारु इल्ला अय्याम मादूदा, कि हमें तो जन्नत आग सिर्फ चंद दिन ही छुएगी। खैर ये रुकू यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं बात फिर आगे करूँगा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।